हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 39-45। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थोमः श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्त सपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतुमीत देव गोविंद दामो धरमाधवीति बरहापीरं नटवरवपुकर्णियो कर्णिकारं बिभ्रात्वा सह कनकपिशं वैजन्तीं च माल्यं रन्ध्रावेणु अधरसुदया पूर्णयो गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तकीर्ति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखिशो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन छो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो जब विदुर जी की भेंट यमुना नदी पर उद्धव जी से हुई तो उनको देखकर हृदय के अंदर बहुत उत्साह उत्पन्न हुआ कि क्योंकि उद्धव जी हस्तिनापुर और द्वारिका से होते हुए आए हैं तो उन सबके विषय में जो हस्तिनापुर में रहते थे जो द्वारिका में रहते थे कुंती महारानी के बारे में देवकी के बारे में वसुदेव के बारे में प्रद्युम्न अनिरुद्ध सात्विकी सबके विषय में पूछा और ये पूछा कि युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं, अर्जुन कैसे हैं, इन सब के विषय में पूछते पूछते आज श्लोक नंबर 39 में विदुर जी नकुल और सहदेव के विषय में पूछते हैं। वे पूछते हैं कि यामावुतस्वितनयो प्रथाया पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षणीव रेमात उत्थाय मृधि स्वरिक्तम् परात् सुपर्णा विभव वज्रि वक्रात् यामावुतस्वितनयो प्रथाया पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षणीव रेमात उत्थाय मृधि स्वरिक्तम् परात् सुपर्णा विभव श्रीवक्त्रात्। यमा वो तस्वित तनयो प्रथाया, यमा मतलब जुड़वा भाई, नकुल तथा सहदेव, उतस्वित क्या तनयो पुत्र प्रथाया प्रथा के, पार्थय वृतो पक्षम भिरक्षणीवा पार्थय यानी प्रथा के पुत्र द्वारा, वृतो यानी संरक्षित थे, ये दोनों छोटे भाई थे और युधिष्ठिर महाराज उनकी रक्षा किस तरह करते थे, पक्षम भी यानी पलकों द्वारा, अक्षणी यानी आंखों की, जिस प्रकार आंखों की जो पलके हैं वो पुतली की सुरक्षा करती हैं, उसी तरह युधिष्ठिर महाराज नकुल और सहदेव की करते थे। इव यानी सदृश रेमा तो उद्याय मृदे स्व रिक्तम रेमाते अर्थात आस असावधानी पूर्वक खेलते हुए उदाय छीन कर मृदे युद्ध में स्व रिक्तम अर्थात अपनी संपत्ति, परात सुपर्णा विव वज्री वक्त्रात परात यानी शत्रु दुर्योधन से, सुपर्ण विष्णु के का वाहन गरुण इव सदृश वज्री वक्त्रात इंद्र के मुख से। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह गरुण ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी दुर्योधन से अपना जो साम्राज्य है वो छीन लिए थे, मतलब उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो अपना न्याय संगत साम्राज्य छीन सकते थे और वो शक्तिशाली युधिष्ठिर महाराज उन नकुल और सहदेव की बहुत ही सुरक्षा करते थे जैसे आंखें पुतली की करते हैं। अनुवाद देखिए, विदुर जी को उद्धव जी पूछते हैं क्या, सॉरी विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक हैं, जिस तरह अंक पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है उसी तरह वे प्रथा के पुत्रों द्वारा संरक्षित हैं, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है और अत्यंत बलशाली है, किंतु भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उसके मुख से अमृत छीन लिया था। इसी तरह दुर्योधन स्वर्ग के राजा के ही समान बलशाली था, फिर भी प्रथा पुत्र पांडव दुर्योधन से अपना साम्राज्य छीनने में सफल रहे। गरुड़ तथा पार्थगण दोनों ही लाडले भगवत भक्त हैं, इसलिए वे ऐसे प्रबल शत्रुओं का सामना कर सके। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं सामने वाला कितना बलशाली है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप भगवान से कितने प्रिय हो ये महत्वपूर्ण है। यदि कृष्ण आपके साथ हैं फिर आपके अंदर भले ही शक्ति की कमी हो, भले ही आपके अंदर योग्यता ना हो, लेकिन भगवान जिसके साथ होते हैं उसकी कभी हार होती नहीं है। विदुर की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे दो भाइयों नकुल तथा सहदेव के विषय में थी। ये जुड़वा भाई माधुरी के पुत्र थे जो अन्य पांडव की वे माता थी। जब माद्री अपने पिता अपने पति महाराज पांडव के साथ प्रयाण कर गई तो कुंती ने उनका भार संभाल लिया था। यद्यपि ये सौतेले भाई थे किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य तीन पांडवों अर्थात युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन के ही समान थे। ये पांचों भाई विश्व में सगे भाइयों के रूप में विख्यात हैं। तीनों ज्येष्ठ पांडवों ने अपने छोटे भाइयों की उसी तरह देख रेख की जिस तरह आंख की रखवाली पलक करती है। विदुर ये जानने के लिए उत्सुक था कि दुर्योधन के हाथों से अपना साम्राज्य जीत लेने के बाद पांडवों के छोटे भाई बड़े भाइयों के संरक्षण में सुरक्षा सुखपूर्वक तो रह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की। नकुल और सहदेव माधुरी के पुत्र थे और जब पांडव का प्रयाण हुआ तब कुंती महारानी बड़ी पत्नी थी और उनका ये अधिकार था कि वो सती होती पांडव महाराज के साथ। परंतु माधुरी ने कहा कुंती महारानी से कि आपने हमेशा हर कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया है और मैं जानती हूँ कि मेरे बाद मेरे पुत्रों को आप अपने पुत्रों से अधिक स्नेह दोगी और कभी भी इनमें कोई कमी नहीं रहने दोगी, इसलिए मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी और आप मेरे दोनों पुत्रों को अपने पुत्रों की भांति संभालना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं रह गई तो मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगी और मैं अच्छे से आपके पुत्रों को नहीं पाल पाऊंगी। इसलिए माधुरी जो है वो सती हो गई थी और कुंती महारानी ने नकुल और सहदेव को कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी वी माता हैं। वो उतना ही प्रेम करती थी जितना अपने पुत्रों के साथ, बल्कि वो छोटे थे तो वो सारे जो तीन बड़े भाई थे वो भी उनको बहुत स्नेह करते थे और बहुत प्रेम के साथ उनकी संरक्षण में हमेशा सुरक्षा करते थे जैसे पलके आँखों की करती हैं। उसके बाद विदुर जी प्रथम महारानी अर्थात कुंती महारानी के विषय में पूछते हुए कहते हैं, आहो प्रथापि द्रियतेर्भिकार्थे राजर्षिवर्येण वीना पितेन यस्त्वेकवीरो दिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीय कुकुभश्च तस्त्र। आहो प्रथापि द्रियतेर्भिकार्थे राजर्षिवर्येण वीना पितेन यस्त्वेकवीरो दिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीय कुकुभश्च तस्त्र। शब्दों का अर्थ देखिए, अहो प्रथापि द्रियतेर बकार थे, अहो मना वो दुख के साथ कहते हैं, प्रथा यानी कुंती अपि भी द्रियते अपना जीवन बिताती है अर्भक अर्थे यानी पितृ विहीन बच्चों के निमित्त, उनके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, बस अपने बच्चों अपने संतान को सुख देना, उनको उनका अधिकार दिलाना। और आगे कहते हैं राजर्षि वर्येण वीना पितेन, राजर्षि राजा पांडव वर्येण सर्वश्रेष्ठ विनापि बिना भी तेन उसके, अपने पति के बिना एक पत्नी सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए जी रही है। यस्त्वेक वीरो धीरथो विजिज्ञ यस्त एके अर्थात वो अकेली वीर योद्धा अधिरथ यानी सेना नायक विजिज्ञ यानी जीत सका धनुर्द्वितीय ककुभश्च तत् धनु यानी धनुष द्वितीय दूसरा ककुब यानी दिशाएं चतस्थ यानी चारों तरफ इतना शूरवीर था कि वो अकेले ही अपने धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत दी थी। अनुवाद देखिए, हे स्वामी क्या प्रथा भी अभी तक जीवित है? वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडव के बिना उसका जीवन जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने के अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक पतिव्रता पत्नी अपने स्वामी अर्थात पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए समस्त विधवाएं स्वेच्छा से उस प्रज्वलित अग्नि को गले लगाती थी जो मृत पति को भस्म कर देती थी। भारत में यह अत्यंत सामान्य प्रथा थी क्योंकि सारी पत्नियां सती तथा पतिव्रता होती थीं। बाद में कलयुग के आगमन के साथ ही पत्नियों का पति परायण होना कम होता गया और विधवाओं द्वारा स्वेच्छा से अग्निदाह अब अतीत की बात हो गई है। अभी थोड़े ही वर्षों पूर्व यह प्रथा समाप्त कर दी गई क्योंकि स्वैच्छिक प्रथा के बलात् सामाजिक प्रथा का रूप धारण कर लिया था। जब महाराज पांडव मरे तो उनकी दोनों ही पत्नियां माद्री तथा कुंती अग्निदाह के लिए तैयार थीं, किंतु माद्री ने कुंती से अनुरोध किया कि वे पांच पांडवों के जो छोटे बच्चे ही थे निमित्त जीवित रहें। जब व्यासदेव ने भी यही आग्रह किया तो कुंती ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। अतिशय विछोह के बावजूद कुंती ने अपने पति की अनुपस्थिति में जीवन का भोग करने के लिए नहीं अपितु बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जीवित रहने का निश्चय किया। विदुर इसी घटना का प्रसंग दे रहे हैं क्योंकि वे अपनी भावज कुंती देवी के विषय में सारी बातें जानते थे। यह ज्ञात होता है कि महाराज पांडव महान योद्धा थे और उन्होंने धनुष बाण की सहायता से अकेले ही विश्व की चारों दिशाओं को जीत लिया था। ऐसे पति की अनुपस्थिति में कुंती के लिए विधवा के रूप में भी जीवित रहना असंभव था, तो भी पांच पुत्रों के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। श्रील प्रभुपाद की। उसके उपरांत विदुर जी धृतराष्ट्र की कुशलता पूछने के बजाय ये कहते हैं कि उसके प्रति तो मुझे दुख हो रहा है, अगर मुझे किसी बात का शोक है तो इसी के मेरा भाई अपने ही भाई के प्रति विद्रोह किया और उनके साथ विश्वासघात किया, तो उनके प्रति मुझे शोक है क्योंकि मैं जानता हूँ वो तो कुशल से हो ही नहीं सकते, वो तो दुखी ही होंगे क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसा किया है। वे कहते हैं सोम्यानुशोचे तमदः पतन्तम् भ्रात्रे परिताय विदु द्रुहेय निर्यापितो येन सुहृत् स्वपुर्या अहम् स्वपुत्रान् समनोव्रतेन सोम्यानुशोचे तमदः पतन्तम् भ्रात्रे परिताय विदु द्रुहेय निर्यापितो येन सुहृत् स्वपुर्या अहम् स्वपुत्रान् समनोव्रतेन। सौम्यानुशोचे तमदः पतन्त सौम्य हे वज्रपुरुष अनुशोचे शोक करता हूँ तम उसको अधपतन्तम् नीचे गिरे हुए भ्रात्रे अपने भाई पर परेताय मृत्यु विदुद्रोह विद्रोह किया यह जिसने निर्यापित भगा दिया गया ये न जिसके द्वारा सुहृत यानी सुशेषी शुभेशी सूर्य स्वपुरिया यानी अपने ही घर से अहम मैं उनका शुभ चिंतक था लेकिन वहाँ से मुझे भी निकाल दिया गया स्वपुत्रान अपने पुत्रों समेत समनुव्रतेन वैसा ही कार्यवाही को स्वीकार करते हुए। अनुवाद हे भद्रपुरुष मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया, उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने ही घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उसके कल्याण का कोई अवसर नहीं था। उसके अधपतित होने का ही समाचार हो सकता था। विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे और उनके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था। उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्राता पांडव के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता था और यह कि उसने अपने कुटिल पुत्रों के आदेश पर उन्हें यानी विदुर को उनके घर से निकाल दिया। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने, प्रत्युत उसके हितैषी बने रहे। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के अंतिम दिनों में भी विदुर ही उसके एकमात्र असली मित्र सिद्ध हुए। विदुर जैसे वैष्णव का आचरण ही ऐसा हो सकता है, वह अपने शत्रु का भी भला सोचता है। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो किसी से शत्रुता नहीं करते। हालांकि विदुर को तो घर से निकाल दिया गया, फिर भी वो वापस आएंगे और धृतराष्ट्र को आके, जैसे हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा था, वो धृतराष्ट्र को आके बताते हैं कि यूं कुत्तों की तरह भीम के फेंके हुए टुकड़ों पर पड़ने की आवश्यकता नहीं है, चलो अपने जीवन को उसके उद्देश्य की ओर लेके चलो। और उनको धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के साथ विदुर जी गए थे वन में। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदुर जैसे वैष्णव का आचरण ही ऐसा हो सकता है कि जो किसके साथ बुराई भी करे उसके साथ भी वो भलाई करते हैं। उसके उपरांत विदुर जी बहुत ही सुंदर बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं तो इतने समय से विश्व भ्रम में भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे किसी बात का कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं, भले ही दिखने में ऐसा लगता है कि वो साधारण है, वो अन्यों को मोहित करते हैं, परंतु भगवान की जो कृपा है उसके कारण कोई व्यक्ति भगवान को जान सकता है और भगवान की शरण में जा सकता है, और जीव संसार में वही जीव जो है वो सुखी हो सकता है जो भगवान के कार्यकलापों को समझे और भगवान की शरण को स्वीकार करे। इसलिए विदुर जी कहते हैं, सोहम हरिर्मार्त्य विडम्बनेना दृश्यो नृणांसा लयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोत्र सोहम हरिर्मार्त्य विडम्बनेन दृश्यो नृणांसा लयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोत्र सोहम हरेर् मर्त्य विडम्बनेना। सो हम इसलिए मैं हरे यानी भगवान का मर्त्य इस मृत्युलोक में विडम्बनेना बिना जाने पहचाने दृश्यो नृणाम शालयते विधातु दृश्यो मन देखने पर नृणाम सामान्य लोगों के चालयते मोहग्रस्त विधाम इसे करने के लिए नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादा न अन्यो न मना नहीं अन्य मना दूसरा उपलक्ष्य यानी दूसरों के द्वारा देखा गया पदवीम अर्थात महिमा प्रसादात मतलब कृपा से चरामी चरामी का मतलब होता है घूमता हूँ पश्यन यानी देखते हुए गत विस्मय बिना संशय के अत्र इस मामले को अर्थात विदुर जी कहते अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो इस मृत्युलोक के मनुष्य जैसे हैं अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतएव वे सभी प्रकार से सुखी हों। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, धृतराष्ट्र का भाई होते हुए भी विदुर सर्वथा भिन्न थे। भगवान कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख नहीं थे, अतएव भाई की संगति उन पर प्रभाव नहीं डाल पाई। धृतराष्ट्र तथा उसके भौतिकतावादी पुत्र अपने बल से विश्व पर अपना झूठा दबदबा बनाना चाह रहे थे। इसमें भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया। इस प्रकार वे अधिक मोहग्रस्त होते रहे। किंतु विदुर तो भगवान की निष्ठा युक्त भक्ति चाहते थे, अतएव उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली थी। वे अपनी तीर्थ यात्रा के समय इसका अनुभव कर पाए, फलतः वे समस्त संशयों से मुक्त हो गए थे। उन्हें अपने घर बार से वंचित होने का तनिक भी खेद नहीं था, क्योंकि अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि भगवान की कृपा पर आश्रित रहना घर पर रहने की तथाकथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि घर पर जो हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं वो केवल तथाकथित है, वो कोई स्वतंत्रता नहीं है। हर किसी के उसके विषय में सोचना पड़ता है, उसके फीलिंग्स को भी सोचना पड़ता है, उसको कैसा लगे, उसको अच्छा देखने में लगता है स्वतंत्र है, परंतु कितनी बेड़ियां हैं। लेकिन जब भगवान की कृपा पर आश्रित रहकर जीव रहता है, जैसे विदुर जी, इतने समय तक उनको किसी की चिंता नहीं थी, वो तो केवल भगवान की कृपा पर आश्रित थे, तो उसका अनुभव उनको हो रहा था कि कितना इस तरह से जीना कितना आनंदमयी है, कि वरना तो घर बार की कितनी चिंता रहती है। मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो ले कि वह भगवान द्वारा रक्षित है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन की इस अवस्था को अभयम सत्वम सत्व संशुद्धिम कहा गया है। प्रत्येक जीव वस्तुतः भगवत कृपा पर पूर्णतया आश्रित है, किंतु शुद्ध जीवन प्राप्त किए बिना वह इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यह आश्रित अवस्था सत्व संशुद्धि कहलाती है। ऐसी संशुद्धि का फल निर्भीकता में प्रकट होता है। भगवत भक्त जो कि नारायण पर कहलाता है, कभी किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह इस तथ्य से सदैव अवगत होता है कि सभी परिस्थितियों में भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इसी संकल्प के साथ विदुर अकेले ही यात्रा कर रहे थे और उन्हें ना तो किसी मित्र ने ना किसी शत्रु ने देखा अथवा पहचाना था। इस तरह वे संसार के अनेक कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे थे। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी संन्यास के विषय में बता रहे हैं कि वैसे तो वो जीवन इतना आनंदमय होता है कि ना किसी की चिंता ना किसी की परवाह, जीव भगवान पर आश्रित होकर जीता है, परंतु फिर भी जब तक जीव को पूरी तरह से यह अनुभव ना हो जाए, यह आश्वासन ना हो जाए कि भगवान रक्षा करेंगे और वो पूरी तरह भगवान को सरेंडर ना हो जाए, तब तक उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा परेशान रहेगा कि पता नहीं, क्योंकि ये दृढ़ विश्वास प्राप्त होना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सभी परिस्थितियों में भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा जब तक विश्वास ना हो तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए। लेकिन विदुर जी को किसी की चिंता नहीं थी, वो अकेले गए थे, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, ना उसे मित्रों की आवश्यकता थी, ना किसी मतलब संबंधी की, ना उसे किसी की परवाह थी, कोई कर्तव्य भी नहीं था, किसी ने उसको देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, अकेले भ्रमण कर रहे थे तीर्थों में। और बिना श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का उपभोग कर पाए। उनको वो आनंद आ रहा था कि वो संसार में रहकर कभी नहीं आता। जब भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक में अपने नित्य आनंदमय श्याम सुंदर रूप में उपस्थित थे, तो जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, वे ना तो उन्हें पहचान सके ना उनकी महिमा को जान पाए। अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, श्रीमद् भगवद गीता 9.11। वे अभक्तों को सदैव मोहग्रस्त करने वाले हैं, किंतु भक्तगण भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण उन्हें सदैव देख सकते हैं। तो भगवान को हम नेत्रों से देखकर पहचान नहीं सकते, क्योंकि भगवान बड़े गूढ़ हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर उनसे भगवान के विषय में श्रवण करता है, भगवान केवल उन्हीं को समझ में आते हैं। इसे भगवान कहते हैं कि किसी जीव पर मैं अनुकंपा करता हूँ तो उसे ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे वो मुझे समझ सकते हैं। तेषाम इव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भक्तगण भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण ही उन्हें समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे भगवान कहते हैं कि आप नाम स्मरण करोगे, प्रेम के साथ मेरा भजन करोगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे तुम मुझे जान सकोगे। आगे विदुर जी भगवान की अनुकंपा के विषय में बताते हुए कहते हैं, नूनम निपाणम त्रिमदोत्पथानम माहिम महुषा लयताम चमो भी वदात प्रपन्ना तिजिहीशयेशो क्योपैक्षताघम भगवान कुरुणम नूनम निपाणम त्रिमदोत्पथानम माहिम महुषा लयताम चमो भी वादात प्रपन्ना तिजिहीशयेशो प्यूपैक्षताघम भगवान कुरुणम। अनुवाद, कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कौरवों का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा तीन प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे कि भगवान देख रहे थे कि कौरव अन्याय कर रहे हैं, वो हर कदम पर पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन तुरंत भगवान ने उनको दंड नहीं दिया। इसका कारण क्या था, श्रील प्रभुपाद जी के मुख से सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में घोषणा की गई है कि भगवान इस मृत्यु लोक में दुष्टों का वध करने तथा पीड़ित श्रद्धावानों की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं, इस उद्देश्य के बावजूद भगवान कृष्ण कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे। यह प्रश्न उठाया जा सकता है, उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों का अपमानों को क्यों सहा, उन्होंने कौरवों को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया। कभी कभी हमारे मन में भी होता है ना, किसी को अपराधी को देखते हैं फिर बोलते हैं भगवान ने इसके हाथ क्यों नहीं तोड़ दिए, भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया। तो अब तो ये वो तो द्वापर युग था, भगवान साक्षात खड़े हैं, भगवान देख रहे हैं कि पांडवों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी भगवान चुप खड़े थे, भगवान तुरंत दंड नहीं दे रहे थे, क्योंकि भगवान के हर एक कार्य में कोई ना कोई रहस्य होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, कि यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों तथा अपमानों को क्यों सहा, उन्होंने कौरवों को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया जब कौरवों द्वारा सबों की उपस्थिति में द्रौपदी को भरी सभा में नग्न देखने के लिए प्रयास में उन्हें अपमानित किया गया, तो भगवान ने उनके वस्त्र को असीम रूप में बढ़ाकर उनकी रक्षा तो की, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। इस चुप्पी का यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने कौरवों के अपराधों को क्षमा कर दिया था, परंतु पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो तीन प्रकार की संपत्तियों, धन, शिक्षा तथा अनुयायियों के कारण गर्वित होते थे, और वे सैन्य की गतिविधियों से पृथ्वी को लगातार उद्विग्न बना रहे थे। भगवान इस ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्रित हों तो उन सबों का एक साथ सफाया कर दिया जाए, जिससे उनका वध करने का उद्देश्य थोड़े में पूरा हो सके। ईश विहीन राजागण या राज्यों के प्रधान जब धन, शिक्षा तथा जनसंख्या वृद्धि से गर्वित उठते हैं तो वे सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को कष्ट देते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे तो संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर उस समय केवल दुशासन और दुर्योधन को ही दंड दे दिया जाता तो बाकी जितने इतने ही सारे उस समय के राजा थे जो अपने सैन्य बल के कारण, अपनी शिक्षा के कारण, जो कितने गर्वित हो गए थे कि वो हर अपराध करते रहते थे, तो उन सबको एक साथ दंड देना चाहते थे भगवान। क्योंकि यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ईश्वहीन राजा होते हैं, यानी जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, उनको जब समृद्ध हो जाते हैं तो फिर सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को बहुत कष्ट देते हैं। श्री प्रभुपाद जी बताते जब भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे तो संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे, अतः भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए योजना तैयार की। अपने विश्व रूप के प्राकट्य में भगवान ने वध करने के अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया है, मैं अवांछित जनसंख्या को कम करने के लिए क्रूर काल रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुआ हूँ। मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ एकत्रित सारे लोगों का सफाया कर डालूंगा। यह वध कार्य तुम्हारी भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, यह पहले से नियोजित है। सारे लोग मेरे द्वारा वध किए जाएंगे। यदि तुम युद्ध भूमि में वीर की तरह प्रसिद्ध बनना चाहते हो और युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का भोग करना चाहते हो तो हे स्वेच्छाचारी, तुम अविलंब इस युद्ध के निमित्त बनकर इसका श्रेय प्राप्त करो। इसे भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता 11.33 में कहते हैं, तस्वात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहत्ता पूर्वमेव निमित्तमात्रम् भवसव्यसाचिन। मैंने इन सबको पहले ही मार दिया है, तुम केवल निमित्त बनो। हे स्वेसाची, तुम अविलंब इस वध के निमित्त बनकर इसका श्रेय प्राप्त करो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, करण और अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात बनो। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान सदैव चाहते रहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। वे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संसार के सारे दुष्टों को एकत्रित होने की प्रतीक्षा की। उनके प्रतीक्षा करने की का यही कारण है और कोई अन्य कारण नहीं है। श्रील प्रभुपाद की भगवान की महिमा को अतिरिक्त बताते हुए कहते हैं, अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय கர்மாண்ய கர்த்துர் கிரஹணாய புன்சாம் நன்வன்யதாகோர் அதிதேக யோகம் பரோ குணானா முத கர்ம தந்திரம் அஜஸ்ய ஜன்மோத் பதநாசனாய கர்மாண்ய கர்த்துர் கிரஹணாய புன்சாம் நன்வன்யதாகோர் அதிதேக யோகம் பரோ குணானா முத கர்ம தந்திரம் அஜஸ்ய ஜன்மோத்பத நாசனாய அஜஸ்ய அஜன்மா ஜன்ம பிரகட் அஜன்மா ஹோத்தே ஹுவே பி வோ பிராகட்ய உன்கா ஹோத்தா ஹை உத்பத நாசனாய துஷ்டோ கா விநாஷ் கர்னே கே லியே கர்மா கர்மாணி கர்த்துர் கர்மாணி மத்லப் காரிய அகர்த்துர் மத்லப் நிட்டல்லே கா கிரஹணாய கிரஹண் கர்னே கே லியே புன்சாம் சாரே வியக்தியோ கா ननु अन्यथा और तो कोई नहीं है कि कह कौन अर्हति योग्य हो सकता है देह योगम शरीर के का संपर्क पर यानी दिव्य परो गुणानाम उत कर्म तंत्र गुणानाम यानी तीन गुणों का उत क्या कहा जा सकता है कर्म तंत्र अर्थात कार्य कारण का नियम अनुवाद भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही किए जाते हैं अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता के इस श्लोक को उच्चारण करते हुए कहते हैं ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்ரஹ பிரம்ம சமிதா 5.1 भगवान का स्वरूप नित्य आनंदमयी तथा सर्वज्ञ है अतएव उनका तथा कथित जन्म एक तरह से केवल प्राकट्य होता है जिस तरह क्षितिज के सूर्य का उत्पन्न होना उनका जन्म जीवों जैसा प्रकृति के प्रभाव तथा विगत कर्मों के फलों के बंधन के अंतर्गत नहीं होता उनके कार्य एवं गतिविधियां स्वतंत्र लीलाएं हैं और भौतिक प्रकृति के कर्म फलों के अधीन नहीं है श्रीमद् भगवद गीता 4.14 में कहा गया है नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलिस्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर् न सबध्यते जीवों के लिए भगवान द्वारा बनाया गया कर्म का नियम स्वयं भगवान पर लागू नहीं होता ना ही वे सामान्य जीवों की तरह कर्म के द्वारा अपने को सुधारने के लिए इच्छुक रहते हैं यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान इस भौतिक जगत पर जब आते हैं तो कर्मों के बंधन के कारण वो जिस तरह साधारण व्यक्ति आते हैं इस तरह से नहीं आते बल्कि वो स्वतंत्र लीलाएं करने के लिए आते हैं अपना प्रेम प्रकट करने के लिए आते हैं जैसे सूर्य रोज प्रकट होता है और अदृश्य हो जाता है तो भगवान भी सदैव होते हैं सूर्य अपने क्षितिज में सदैव होता है कभी दिखता है कभी नहीं दिखता लेकिन उसी तरह से भगवान भी सदैव हैं और कभी दिखते हैं तो वो प्रकट होते हैं ऐसा नहीं है कि उन वो चले जाने के बाद उनका होना नहीं रहता वो होते हैं लेकिन हमको दिखते नहीं हैं तो उसी तरह से यहाँ पर भगवान के कार्यकलाप हैं भगवान जो कार्य करते हैं वो कर्मों के हिसाब किताब के लिए नहीं करते हैं बल्कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलस्प्रा जीव जो भी कार्य करता है वो कर्म फलन के अनुसार करता है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब के लेकिन भगवान जो कार्य करता है वो केवल और केवल लीला करता है और उसके फल के लिए भगवान को भोगने के लिए वापस नहीं आना पड़ता आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं साधारण जीव अपने बद्ध जीवन को सुधारने के लिए कर्म करते हैं किंतु भगवान पहले से समस्त ऐश्वर्य समस्त बल समस्त यश समस्त सौंदर्य समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है तो फिर वे सुधार के लिए इच्छा क्यों करें कोई व्यक्ति किसी भी ऐश्वर्य में उनसे आगे नहीं हो सकता। अतएव सुधार की इच्छा उनके लिए सर्वथा निरर्थक है। मनुष्य को सदैव भगवान तथा सामान्य जीवों के कार्यकलापों में अंतर करना चाहिए, तभी वह भगवान के दिव्य पद के विषय में सही निर्णय पर पहुंच सकता है। जो भगवान की दिव्यता के विषय में किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, वह भगवान का भक्त बन सकता है और अपने विगत कर्मों के समस्त फलों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान भक्त के विगत कर्मों के फलों को या तो कम कर देते हैं या एकदम निष्प्रभावित कर देते हैं। ब्रह्म संहिता 5.54। बहुत सुंदर बात श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम कार्य क्यों करते हैं। हम उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, है ना। कोई भी आप कार्य करते हो, धन प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, सौंदर्य प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान तो परिपूर्ण है, षडेश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में उनके पास है, इसलिए भगवान इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए या अपने जीवन को सुधारने के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि भगवान तो केवल और केवल अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए लीला करते हैं। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी ने निर्णय दिया है कि जब कोई दिव्यता के विषय में किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, वह भगवान का भक्त बन जाता है, क्योंकि भगवान के विषय में जब सुनता है भगवान के का तो भक्त बनता है। कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान भक्त के विगत कर्मों के फलों को या तो कम कर देते हैं या एकदम निष्प्रभावित कर देते हैं। तो ये भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो बहुत सारे कर्मों के पोटली को लेके आते हैं, लेकिन जब जीव भगवान के आश्रित हो जाता है तो वो कर्मों का बंधन जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के कार्यकलाप सभी जीवों द्वारा अपनाए जाने तथा आस्वाद किए जाने के लिए हैं। उनके कार्यकलाप सामान्य व्यक्ति को भगवान के प्रति आकृष्ट करने के लिए होते हैं। भगवान सदैव भक्तों के हित के कार्य करते हैं, अतएव सामान्य व्यक्ति जो कि सकाम कर्मी होते हैं या मोक्षकामी होते हैं, भगवान के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं जब वे भक्तों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। तो वो हमेशा अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करते हैं। तो जो भी भगवान की लीलाओं को श्रवण करता है, भगवान की करुणा के विषय में श्रवण करता है, जो सकाम कर्मी होते हैं, जो मोक्षकामी होते हैं, भगवान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं जब वे भक्तों के रक्षक के रूप में भगवान के कार्य करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हमें भी भगवान का भक्त बनना चाहिए, तभी तो भगवान हमें भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते, सकाम कर्मी भक्तिमयी सेवा द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और मोक्षकामी भी भगवत भक्ति द्वारा अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्तगण ना तो अपने कर्म का फल चाहते हैं, ना ही वे किसी प्रकार का मोक्ष चाहते हैं। तो वे भगवान के यशस्वी अति मानवीय कार्यों का, यथा उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा बाल्यकाल में ही पूतना राक्षसी का वध किए जाने का आस्वादन करते हैं। उनके कार्य सभी प्रकार के लोगों, कर्मियों, ज्ञानियों तथा भक्तों को आकृष्ट करने के लिए संपन्न किए जा सकते हैं, आकृष्ट करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। चूंकि वे कर्म के समान नियमों से परे हैं, अतएव उनके लिए माया के रूप को स्वीकार करने की संभावना नहीं रहती। जिस प्रकार अपने कर्मों के फलों से बद्ध सामान्य जीव बाध्य होता है, उनके प्राकट्य का गौण प्रयोजन दुष्ट असुरों का संहार करने तथा अल्पज्ञों द्वारा अनर्गल नास्तिकतावादी प्रचार को रोकना है। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्यों आते हैं भगवान, गौण प्रयोजन क्या है, दुष्टों असुरों का संहार करना और अल्पज्ञों द्वारा जो अनर्गल नास्तिकतावादी प्रचार करते हैं उनको रोकना। भगवान की अहितु की कृपा से भगवान द्वारा मारे जाने वाले असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान का सार्थक प्राकट्य सामान्य जीवन से सदैव भिन्न होता है, यहाँ तक के शुद्ध भक्तों का भी भौतिक देह से कोई संबंध नहीं होता और सच्चित आनंद रूप में प्रकट होने वाले भगवान निश्चित रूप से भौतिक रूप द्वारा परिसीमित नहीं होते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। क्योंकि भगवान का एक ही उद्देश्य है, भगवान को कृपा करना ही आता है, तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की अहितु की कृपा से भगवान द्वारा मारे जाने वाले असुरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। कितनी बड़ी कृपा है। तो युद्ध भूमि में जो भगवान के समक्ष जिस जिसकी मृत्यु हुई, साक्षात भगवान के दर्शन करते हुए उनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ। तो भगवान का सार्थक प्राकट्य सामान्य जन के सदैव भिन्न होता है। और भगवान को छोड़िए, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उनका भी भौतिक देह से कोई संबंध नहीं होता है और सच्चिदानंद रूप में प्रकट होने वाले भगवान निश्चित रूप से भौतिक स्वरूप द्वारा परिसीमित नहीं हो सकते हैं। भगवान का स्वरूप जो है वो दिव्य है। भगवान के कार्यकलाप, भगवान स्वयं कहते हैं कि जन्म कर्म शमे दिव्यम एवं योवेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सोजर्जुन। सो अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य है, जो ये जान लेता तत्व से उससे भी दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता, मामेति वो मुझे प्राप्त करता है। और अंतिम श्लोक में वेदुर जी अपना निर्णय देते हुए कहते हैं, तस्य प्रपन्ना खिल लोक पानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष वजस्य वार्ताम सखे की दयतीर्थ कीर्ति तस्य प्रपन्ना खिल लोक पाना अवस्थितानाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ताम सखे कीर्तयतीर्थ कीर्ते तस्य प्रपन्ना खिल लोक पाना। तस्य मन उसी का, प्रपन्ना शरणागत हो जाइए, अखिल लोक पाना यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे शासकों के अवस्थिताना अनुशासन, अवस्थितान यानी स्थित, अनुशासने नियंत्रण में, स्वे अपने अर्थाय यानी स्वार्थ हेतु, अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य, अर्थाय यानी स्वार्थ हेतु, जातस्य उत्पन्न होने वाले, यदुष्व यदुकुल में अजस्य अजन्म होते हुए भी अपने यदुकुल में अपने स्वार्थ के लिए उत्पन्न होते हैं। और वार्ता सखी की तयतीर्थ कीर्ति, वार्ता यानी भगवान की कथाएं, सखे हे मित्र, कीर्तय कहो, तीर्थ कीर्ति तीर्थ स्थानों में जिनके यश का कीर्तन होता है उन भगवान का। अब मुझे उन भगवान के विषय में बताओ, उनका कीर्तन करो, उनके नाम का, उनकी लीलाओं के विषय में उन्होंने क्या किया। अब तो उनके साथ थे तो कृपया अब उनके विषय में मुझे बताइए। अनुवाद देखिए, अतएव हे मित्र, भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। वे अजन्मा हैं, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भोगों के शरणागत शासकों पर अपनी अहितु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मांड भर में नाना प्रकार के लोकों में असंख्य शासक हैं। सूर्यलोक में सूर्यदेव, चंद्रलोक में चंद्रदेव, स्वर्गलोक में इंद्र, वायु, वरुण तथा ब्रह्मलोक में देवता, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं, ये सभी भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। जब भी विभिन्न ब्रह्मांडों के असंख्य लोकों के प्रशासन में कोई विपत्ति आती है तो उनके शासक भगवान से प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं और वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.3.28 में निम्नलिखित श्लोक में पहले ही हुई है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान जो है वह जन्म है, लेकिन जितने भी शासक हैं बड़े बड़े अलग अलग लोकों में जो देवता हैं, उनके ऊपर जब विपत्ति आती है तो क्या करते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं आप धरती पर जन्म लीजिए और इस असुर का नाश कर दीजिए, वो तो पृथ्वी पर रहने वाला और हमारे स्वर्ग लोक पे आके आक्रमण करता है और वो इतना शक्तिशाली है कि हम उनको परास्त भी नहीं कर सकते। तो वो तो सब वैसे तो भगवान के अलग अलग स्वरूप इस संसार में आते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता 1.3.28 में बताया गया, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति आती है तो भगवान प्रकट होते हैं। वे अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए भी प्रकट होते हैं। शरणागत शासक तथा शुद्ध भक्तगण सदैव भगवान के कठोर नियंत्रण में रहते हैं और वे कभी भी भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करते, इसीलिए भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु भक्त होते हैं वो बहुत ही शुद्ध होते हैं, अनन्य होते हैं और वो कभी भी भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करते। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करते कि जो भगवान को अच्छा नहीं लगता हो, भगवान की आज्ञा और उपदेश के अनुसार ही चलते हैं, इसीलिए भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। यदि हम भी चाहते हैं कि भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करें, भगवान हमें अपना संरक्षण प्रदान करें, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि भगवान को अच्छा नहीं लगता हो, भगवान की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे, तीर्थाटन का उद्देश्य भगवान का निरंतर स्मरण करना है, इसीलिए भगवान तीर्थ कीर्ति कहलाते हैं। तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य भगवान की महिमा के गायन का अवसर प्राप्त करना है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तीर्थ स्थान के जो उद्देश्य है उसके विषय में बता रहे हैं कि वहाँ पर जाकर केवल भगवान की महिमा का गान करना चाहिए, भगवान के विषय में भी श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। आज भी यद्यपि समय बदल चुका है, फिर भी भारत में तीर्थ यात्रा के अनेक स्थल हैं, उदाहरणार्थ मथुरा तथा वृंदावन में, जहाँ हमें ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जहाँ पर राधा दामोदर में श्री प्रभुपाद जी रहते हैं, तो बोला भगवान की कृपा है, लोग प्रातःकाल 4 बजे से जागकर रात होने तक किसी न किसी रूप में भगवान की महिमा का गायन के गायन में लगे रहते हैं। ऐसे तीर्थ स्थान की शोभा यही है कि मनुष्य को स्वतः भगवान की पवित्र महिमा का स्मरण होता है। वहाँ पर जाकर अच्छा क्या हुआ, हम वृंदावन में गए तो वृंदावन में ना हर वक्त ही होता, अब राधा रमण जाना है, अब बरसाना जाना है, अब बरसाना की परिक्रमा करनी है, अभी गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, अभी वृंदावन की परिक्रमा करनी है, अभी आरती का समय हो गया है तो राधा श्याम सुंदर के पास जाना है, अभी है ना इधर जाना है, अभी राधा टीला जाना है, अभी यहाँ जाना है। हर वक्त ऐसा होता था कि ये यहाँ पे भी जाएं, अभी रमणसी में जाएंगे, अभी हम राधा कुंड जाएंगे, श्याम कुंड जाएंगे। तो हमारे साथ एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि हमने सोचा था यहाँ पर आके भजन करेंगे और भजन में मन लग रहा ही नहीं है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी उधर जाना है, तो भक्ति तो हो ही नहीं रही हमारी। तो एक दूसरे भक्त थे वहाँ पर ब्रजवासी, वो कहते हैं यही तो भजन है, इससे बढ़कर और क्या भजन होगा कि हर वक्त यही है कि मुझे मुझे राधा कुंड जाना है, वहाँ पर राधा रानी साक्षात है, मुझे राधा रमण के दर्शन करने जाना है, वहाँ पर साक्षात भगवान है। तो यही तो भजन है कि मन पूरा का पूरा भगवान में लगा हुआ है, हमें राधा रमण जाना है, हमें अभी बरसाना जाना है राधा रानी के दर्शन करने, तो वहाँ पर तो साक्षात स्वरूप है। तो ये कि वहाँ पर तो आता ही नहीं है कुछ संसार याद, तो ये ही तो भजन है कि कृष्ण कृष्ण का और कृष्ण की ओर आकर्षण हो, कृष्ण का प्रेम बढ़े। तो यहाँ भी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसे तीर्थ स्थान की शोभा यही है कि मनुष्य को स्वतः भगवान की पवित्र महिमा का स्मरण होता है, उनका नाम यश गुण रूप लीलाएं तथा साज सामग्री भगवान से अभिन्न है, अतएव भगवान की महिमा के कीर्तन से भगवान की साकारता का आवाहन होता है। किसी भी समय या कहीं भी शुद्ध भक्तगण मिलकर भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं तो निसंदेह भगवान आकर उपस्थित होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भक्तजन चर्चा करते हैं तो भगवान वहाँ पर आकर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जहाँ उनके भक्त उनकी महिमाओं का गान करेंगे वहाँ वे सदैव रहेंगे। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरे विषय में संकीर्तन करते हैं, मेरे यश का बखान करते हैं। तो यहाँ पर दो शुद्ध वैष्णव का मिलन है, उद्धव जी और विदुर, तो इन दोनों का मिलन श्रीमद् भगवद गीता 10.9 में भगवान ने कहा मत चित्ता मत कथा प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च नमन्ति च। जब मेरे भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, कथयंतश्च माम नित्यम, वो केवल मेरे विषय में ही बात करते हैं क्योंकि उनका मन मुझ में लगा हुआ है, उनके प्राण मुझ में लगे हुए हैं, उनका जीवन मेरे विषय में श्रवण करना है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न होते हैं, तुष्यंति चरम बहुत खुश होते हैं जब मेरे विषय में वार्तालाप होते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी के प्रश्न जो उन्होंने पूछे थे वो समाप्त हुए, आगे हम उनका उत्तर सुनेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय स्कंध के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।